हम खुद रुकावट होते हैं। आई एम माई सेल्फ, क्योंकि कभी किसी की रुकावट सुस्ती है, बस सुस्त है बैठे में बैठे। तो बैरियर्स में सबसे बड़ी रुकावट आप और मैं खुद हैं। मी, मेरी आदत, मेरी सुस्ती, मेरी डिस्ट्रैक्शन, मेरा लुक बिजी डू नथिंग होना और मेरा अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करवाना। पिछले सेशन में हमने बहुत डिटेल से बात की 2 पॉइंट्स पे। सारी ज़िंदगी बैठकर दूसरों से ही अपने आप को जोड़ते रहते हैं। हाँ, कभी कभी इसी तरह की हमारी रुकावटें जो होती हैं उसमें हमारी कोई एक ही आदत होती है, बस ज़्यादा नहीं होती। मैं तो जब लोगों को मिलती हूँ मुझे तो वो अल्लाह ताला के शाहकार लगते हैं, लेकिन बस एक आदत नहीं अच्छी होती। किसी के बोलने का अंदाज़ अच्छा नहीं, किसी के चलने का अच्छा नहीं, किसी के हंसने का अंदाज़ अच्छा नहीं। अब इसकी मौजूदगी में कहाँ आपको फ्रंट लाइन पर लाया जाए। कभी आपके कह लीजिए कि दिल में खोट होता है, कहीं तकब्बुर होता है, कहीं हसद होता है, तो याद रखिए कि जैसे पजल्स होते हैं ना, छोटी बड़ी चीज़ों को मिलकर एक बड़ी प्यारी तस्वीर बनती है ना, तो हम अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी रुकावट खुद ही होते हैं। आज के बाद ये सोचने की बजाय जो एक और तरह से बताने लगी अभी, अक्सर लोग भी इसी किस्म के हैं। जैसे मेरा ख्याल है कि मैंने पिछले वक्त में शेयर किया कि नहीं, एक शख्स था तो वो एक बड़े समझदार बंदे और जिसको लोग हकीम कह लें, आमिल कह लें, उनके पास गया कि मेरे पे ना किसी ने काला जादू कर दिया है। चले जी, अच्छा ये काला जादू नाम का बाबा भी हमारे कल्चर में बड़ा मशहूर है। बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, जादू कर दिया, रिस्क नहीं है, रिस्क बांध दिया। पता नहीं ये आज तक लॉकडाउन और कोरोना वायरस को किसी ने जादू क्यों नहीं कहा। अगर कहा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कहा कि जी बाबा जी मेरा कोई तोड़ कीजिए और ये वो। उसने कहा कि देखो, अब जाहिर है कि जब तुम्हारा इलाज जो करना है तो तुम्हारे इर्द गिर्द रहना पड़ेगा ना, तो तुम मुझे एक हफ्ता तक जिधर जाते हो उधर आप ले जाओ, तो मैं ज़रा देखूँ कि जैसे वो बाबे वैसे लोगों के ईमान बेचने खरीदने वाले घर को देख जाएंगे। अच्छा भी बस जी लग गया पता जी, ये भूतों का बंगला घर, ये नीचे जी कब्रिस्तान है भूतों का और ये वो। किस्सा मुख्तसर। अब होता क्या कि उसने कहा कोई बड़ी बात नहीं बाबा जी, अच्छा है, बल्कि आप जाएंगे हो सकता है आपकी बरकत ही हो जाए। किसी दिन किसी मीटिंग में गए तो उधर बाबा जी को ले गए, किसी सेल एंड परचेज और ऐसी 2-4 चीज़ें थी उधर चले गए बाबा जी। एक हफ्ते में उनका क्या किराया सारा दे के, और बाबा जी बड़े अक्लमंद थे, उन्होंने क्या किया कि जहाँ जहाँ गए लोगों से कुछ राबते ले लिए, और उन राबतों में उन्होंने जब उनसे पर्सनल फीलिंग बना ली तो बाद में एक एक से सुनाए भी क्या हाल है, कैसा जा रहा है, कैसा है आपका बॉस। हर बंदे की जुबान पे क्या लफ्ज़ थे, बखील, सख्त दिल, सख्त जुबान और सोवान। यानी खुद खाता है तो हमें खाने को नहीं देता, अगर आप खुद पीसी से जाके खाएगा तो हमें 10 रुपए वाले होटल से जाके रोटी मंगा देगा। और बाबा जी ने एक हफ्ते में जान लिया। सुनाए बाबा जी कोई तोड़ निकला, उसने कहा तोड़ तू है, तेरा अखलाक इतना बुरा तेरे साथ चलेगा कौन, तू तो इतना कंजूस है और तू तो इतना जुबान का तेज है और तू तो इतना शक्की मिजाज बंदा है, तू तो बंदे की कदर ही नहीं करता, खड़े खड़े को निकाल देता है, तू खुद काला जादू है। तो याद रखिए हम पे किसी ने जादू नहीं किया, और तक कौन इतना फारेगा। और नौजुबिल्ला आप कोई ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो जादू शादू करते रहते हैं हर वक्त। हम अक्सर अपनी रुकावट खुद होते हैं। इसको आईने में ढूंढिए, ये अखबारों में नहीं मिलेगा, खबरों में नहीं मिलेगा, इर्द गिर्द भी ना ढूंढे, क्योंकि अक्सर फिर हम अपने इर्द गिर्द वालों को वजह बनाते हैं। मुझे ये लोग नहीं अच्छे मिले, ये ना मिला। मसलन जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं कि जी ये दीन का काम है, मिसाल देती हूँ सिर्फ आप सबको बीच में रहते हुए कि आप में से जितने भी लोग सुन रहे हैं आप सबकी मुख्तलिफ पोजीशनें हैं ना, हर एक मेरी नज़र से तो नहीं देखेगा ना। मसलन वो जी क्लास शुरू हुई थी, क्या हुआ, वो छोड़े जी, हम लोगों को शौक ही नहीं, आते ही नहीं। फ्लायर बना था, शुरू में बड़े लोग आए फिर नहीं आए। ये जुमला आप लिखें हाँ ज़रा, कितने लोग ये जुमले बोलते हैं कि शुरू में बहुत लोग आते हैं फिर नहीं आते। अच्छा और किसी और का हाल पूछिए, वो जब फ्री पढ़ाते थे बड़े आते थे, ज़रा सी फीस रख ली के चले संजीदा लोग सामने आ जाए, लोगों ने आना छोड़ दिया। अच्छा आप फ़ौरन समझ जाइए इतना निकम्मा सौदा है, पैसों से कोई नहीं लेगा, फ्री में 4-6 आ जाएंगे कि चलो घर बैठना था इधर, और इधर चाय भी मिलती है और बाद में कभी कभी वनडिश होती है तो मज़े के खाने खाते हैं। यानी आप खुद अपने आप को डिवेल्यू करते हैं। फिर इसी तरह से अक्सर हमें स्टूडेंट से गिला होता है, साथ काम करने वालों से गिला, लोगों को शौक नहीं है, लोग वॉलंटियर नहीं करते, पैसे दो तो वक्त पे आएंगे, पैसे ना दें तो वक्त पे नहीं आएंगे। यानी मैं ये कॉमन थिंग्स आपको बता रही हूँ जो अमूमन हमारे जहन में आती हैं। हम अमूमन इस तरह की चीज़ों को वजह बनाकर अपने आप को बिल्कुल साफ करते हैं, और हम कहते हैं मैं तो बड़ी अच्छी थी, बस मेरी कदर ही ना की किसी ने, और फिर ये मसला तो वो मसला, तो कभी कहते हैं दूरी का मसला, कभी करीबी का, और इसी तरह से कुछ और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो एक बात अभी तक हमने समझी, अल्लाह ने जिस तरह एक अच्छे दरख्त की खूबियाँ दी थी ना, जड़ जमी हुई, खुद से पूछिए जो काम कर रही हूँ उसमें मेरी जड़ें साबित हैं। देखिए कितना भी कीमती दरख्त क्यों ना हो ना, जब जड़ कट जाती है ना तो कुछ सालों या महीनों में वो रूटलेस हो जाता है, तो वो बेकार होता है। क्यों कहते थे लोग पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, ये दरख्त है ना। इसी से अगली मिसाल में देखिए कि वह मसलु कलीमतिन खबीसतिन का शजरतिन खबीसा, अल्लाह ताला कहते हैं कि एक और दरख्त की भी मिसाल अल्लाह ताला देते हैं, और वो नापाक है, नापाक बात की मिसाल यानी शिर्क वाली बात और बेहूदगी की बात, गंदे दरख्त की तरह है जो ज़मीन के कुछ ही ऊपर से उखाड़ लिया गया और इसे कुछ सुबात ही नहीं, मालहा मिन करार, यानी जिस तरह पाकीज़ा कलेमा पाकीज़ा दरख्त की तरह है, खैर का ज़रिया है, इसी तरह एक गंदा दरख्त है। सूरह मुनाफिकून बस खुद ही पढ़ लीजिएगा, उसमें एक आयत आएगी निफाक भरे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने वहाँ भी लकड़ी ही की मिसाल दी है कि ये मुनाफिक तो ऐसे हैं कि जैसे लकड़ी के कुंडे, और जैसे पैनलिंग नहीं की जाती, खूबसूरत सी सजा कर लकड़ी को करके डिज़ाइनिंग करती जाती है दीवारों से, अल्लाह ताला ने खोटे को, जहाँ ना तो हम मोमिन की बात कर रहे हैं कि हम मुनाफिक बोलें, बेखैरे को लिख लीजिए, क्योंकि आप कहते हैं ना आपके अंदर खैर है, तो जो बेखैरा होता है ना, जिसके अंदर ना खैर थी ना उसकी क्वालिटी अच्छी थी, ये अलग बात है कि वो खुद को कोई बहुत ही बड़ा समझ रहा था, अल्लाह ताला ने उसकी भी मिसाल लकड़ी से ही दी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो दरख्त है ये तो ये हर मौसम में देता है, ये फुल टाइम है, इसका कोई पार्ट टाइम काम नहीं है ये। इसके बरक्स बेखैरा, सूरत मुनाफिकून की आयत नंबर 4 नोट कर लें, बाद में जाके देखिएगा, अल्लाह सुब्हान तआला ने उसके लिए कहा कान्नम खुशबू मुसन्नदा, गोया कि वो लकड़ी है जो कंदा कर दी, सजा दी गई, यहसबून कुल्ल सैहतिन अलैहिम, तो क्या पता चला कि जब दरख्त ज़मीन से जुड़ा रहता है ना तो उस पर बहार भी आती है, उस पर खिजां भी आती है, उसके पत्तों के रंग बदलते भी हैं, फिर पत्ते झड़ते हैं, कभी खिजां की सूखी टहनियों को कोई देखे तो कोई कह सकता है कभी इस पे इतने हरे पत्ते फिर आ जाएंगे, लेकिन चूंकि पेवस्तगी थी। तो जब हम किसी भी काम के करने के बीच में इन चीज़ों पे आते हैं तो हमें खुद अपनी गलतियां दिखती हैं, हम खुद दरख्त से कट जाते हैं, गोया कि अपने आप को खतरों में रख लेते हैं। फिर दूसरी बात देखिए कि जब भी हम प्रोडक्टिव होने की बात करते हैं और रूट टू फ्रूट की बात करते हैं, जो हम इस वक्त कर रहे हैं, तो हम ये सोच लेते हैं कि खैर का मतलब यह है कि पढ़ाना आता है, खैर का मतलब ये है कि बात बड़ी प्यारी करनी आती है, लच्छेदार बातें, और हमें तो आती कोई नहीं। आज सुबह से एक तो मैं जहनी तौर पे तैयार हो रही होती हूँ ना अपने टॉपिक के लिए, मैं बिल्कुल उसको इतना को फील करती हूँ कि इस वक्त भी मैं फील कर रही हूँ। इसी तरह अल्लाह ताला की तरफ से हालात कुछ मेरे सामने आ जाते हैं। आज सुबह से जो कुछ चंद चीज़ें हुई और मैं सोच रही थी, मुस्कुराती हूँ कि अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया आपका, बल्कि कभी कभी तो ना समझी में बंदा अल्लाह को भी कह देता है, अल्लाह ताला जजाक अल्लाह खैर, अल्लाह आपको बड़ा जजा दे क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात दिल में डाली। आज सुबह उठी ना तो वो बच्चों की तरह एक जुबान पे जुमला था, कभी बच्चों को भी देखा करे ना, सुबह उठ के जो जुमला बोलते हैं ना सारा दिन फिर वही बोलते हैं, बाज तो रात को रोते सोते हैं ना किसी चीज़ की जिद में, तो सुबह उठ के पहली चीज़ जो होती है मुझे ये ले, तो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ चीज़ें इंसान के दिल दिमाग में डाली जाती हैं। आज कोई बात नहीं हुई हुई थी, कुछ भी नहीं था, बस सुबह उठी तो दिमाग में एक जुमला था, मेरे पौधों की हिफाजत करना। खैर आज दिन में एक बहुत ही अहम मीटिंग थी हमारी, किसी भी जगह का स्कूल है तो वहाँ माशाल्लाह अगला बैच शुरू हो रहा है, तो नए साथियों को ट्रेन किया जा रहा था, खैर स्केड्यूल किया ही इस तरह जाता है कि मैं भी अपना कुछ हिस्सा डालूं, तो मुझे उन्होंने वीडियो कॉल पे साथ लिया, वो सारे साथी एक जगह जमा थे, और अब देखिए कि सिर्फ 3 साल पहले वो बीज भी नहीं थे, हमारे एक कोर्स, नाम ले लेती हूँ कोई बुरी बात भी नहीं, पेरिस, जाकर देख लीजिए पेरिस का दौरे कुरान किस साल में हुआ था, उसके बाद की ये खेती फसल थी जो लगी थी, पहला सबीलुल जन्ना पूरा हुआ अभी रमज़ान में ही उससे इर्द गिर्द, तो अब उनको अगले कोर्स में डाल दिया गया नूरुला नूर में, और अब दूसरा जो सबीलुल जन्ना इस साल भी शुरू हो रहा है ये उसमें एज अंसारुल्ला बन रहे हैं। तो मैं जब उनको देख रही थी, वीडियो पे थी, और सुबह सुबह वैसे ही बंदे का जहन भी बड़ा फ्री होता है, तो फिर मुझे रोना आ गया, मैंने सोचा कि अगर पेरिस में दौरे कुरान ना होता या हमसे नल्ला करवाता। चलिए ये भी उसकी इनायत है कि जितने भी शहरों को हम जानते हैं उसमें पहली दफ़ा अल्लाह ने हमें ही मौका दे दिया, ये भी बड़ी अल्लाह की करम नवाजी है। तो मैं सोचने लगी कि अगर ये सवीलुल जन्ना करते हुए तकरीबन 300 दिनों तक ना आते तो क्या आज ही स्टेज पे होते? वैसे बैठे थे जैसे प्यार से कहूँ अगर कि सड़कों के किनारे कुछ मजदूर आके बैठ जाते, जी आज कोई काम मिल जाए, हम काम लेने आए हैं, और वो इतने खुश अपने कामों पे। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप भी अपना मैसेज दीजिए। बस मेरी जितनी को आवाज़ निकली रुंधी हुई उसमें यही था कि मेरे इन पौधों की हिफाजत करना, इनको पानी देना, क्योंकि ये पौधे हैं, ये एक फसल तैयार हुई है जो अब अगले तरह पे आएगी और अगले चंद सालों बाद देखिएगा कि ये कहाँ होंगे। आज ये स्टूडेंट हैं और एक आखिरी दम तक ज़िंदगी के स्टूडेंट रहेंगे, और अब ये अंसारुल्ला बन रहे हैं। 1-2-3 साल में इन्होंने इतना एक्सपर्ट हो जाना है कि आगे ये एडमिन्स बन जाएंगे, और एक दिन आएगा कि ये फिर जिम्मेदार बन जाएंगे, और फिर ये कभी नहीं जाएंगे। जो जिम्मेदार बन के पीछे फिर नौकर बनने लगे, तुफ है उस पर। मैं अपने ऊपर बात करती हूँ, मैं आपके साथ इस वक्त बात कर रही हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। रियली आई एम वेरी मच रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ नूरुल कुरान। मेरा तारुफ या तो टीचर का या जिम्मेदार का, कि अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी ऑनर दी है तो मैं इसको छोड़कर कहीं पलटूँ क्यों, मैं देखूँ क्यों? मुझे इस वक्त में कोई $10,000 भी ऑफर करे ना कि आप हमसे 1 महीने के ले लीजिए, तो ये पढ़ाने ले तो पहले ही बड़े हैं, सुनता कौन है वैसे भी आजकल दीन की बातें। तो आप आइए ज़रा, आप बात कीजिए, हमें फलां फलां चाहिए आपके से हेल्प। तो मेरे लिए वो वही बात है कि तायरे ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, किससे आती हो जिससे परवास में कोताही। अल्लामा इकबाल का शेर फिर समझ आता कि जिस रिस्क को पाने की वजह से मेरी परवाज हल्की हो जाए, यानी मेरी स्पीड हल्की हो जाए या मेरा वक्त कम हो जाए या कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं चाहिए। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, ये तो पैगाम कुरान देता है आपको मुझे। लेकिन याद रखिए, मिट्टी में हाथ डालें और सोना बने, तो मिट्टी में हाथ कौन नहीं डालेगा? हम कहेंगे नहीं, मुझे तो मिट्टी में नहीं हाथ डालना, मेरा हाथ आप शहद में डलवा दें। ये वो फितरत का असूल है जो प्रोडक्टिविटी का अंदाज हमें कायनात भी सिखा गई और हमारे प्यारे नबी भी सिखा गए। अल्लाह ताला ने आपके मेरे अंदर जो खैर रखी हुई है ना, आप उसको जिस दिन पहचान गए ना, उस दिन आप पूरे दरख्त के मालिक होते हैं। बज़ाहिर दरख्त में क्या है, बीज है, लेकिन आप देखिए कि अंदर क्या क्या है। ज़मीन ना हो, खाद ना हो, सूरज की रोशनी ना हो, पानी ना हो, तो फ्रूट कौन खाएगा? बाजार से क्या खरीद के लाते हैं आप? सेब खरीदते हैं ना, तो सेब किस चीज के मजमुए से बना? ये है फितरत की ग्रोथ, टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क। अपनी खैर को पहचानने के बाद आपको पता लग जाता है कि मैं किस चीज में अच्छा हूं। आप कहते हैं मैं किसी चीज में नहीं अच्छी। ये भी आज सुबह की मीटिंग में जुमला सुना, सारे साथी जो थे जिनको असाइन की जा रही थी ड्यूटीज, तो उन्हें कहा कि शेयर करें। तो बड़ी प्यारी दिल के करीब साथी हैं, सारे बड़े प्यारे हैं, अल्लाह जानता है एक से एक दिल में रहता है, पता नहीं जगह कहाँ से बनती जाती है हर बंदे की, मैं खुद हैरान हूँ। तो उससे पहले ये कोई सेशन सुन चुके थे शायद, उसमें कोई मिसाल थी, तो वो कह रही मैंने नहीं आना, नहीं मुझे नहीं बोलना आता, मेरी आवाज़ नहीं अच्छी, मुझे कुछ नहीं आता ये वो। तो आखिर में वो कुछ ऐसी बात उन्होंने की जो अब बताऊँगी तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, वहाँ बहुत ही मेरा दिल हिल गया। कहने लगी उस्ताज़ा मैं तो हलीम का वो रोड़ा हूँ जो गाल ही नहीं रहा, यानी कि मुझे तो अभी कहीं और पढ़ने पर डाले, मुझे नहीं अभी पढ़ना आया। अब वो उनका अंदाज था, लेकिन मैं सोच में पड़ गई। जिस दिन बंदा अपने आप को पूरा समझ लेता है ना कि साहब भाग गया, वो भाग जाता है। हमारे असलाफ इसीलिए डिग्रियां नहीं देते थे, सनद नहीं देते थे, वो कहते थे इसने वापस ही नहीं आना, वो आखिरी बारी हो गए जिस दिन वो सनद लेने आएंगे, जरा वो हमारा सर्टिफिकेट दे दीजिए ना, उसके बाद नहीं वो बोलते, कहते थे अभी इनको आया ही क्या जो हम इनको डिग्री दे दें, आराम से बैठो। तो बिलफर्ज मैं अपने ऊपर ही लेती हूँ, आप तो बड़ी खूबियों वाले हैं। मैंने ढूंढा, परखा, देखा, मुझे अपने अंदर कोई खैर ना दिखी, ना मुझे बोलना आता, ना मुझे पढ़ना आता, ना पढ़ाना आता, मुझे कुछ आता ही नहीं है। सवीलुल जन्ना करके देखा, ना मेरे किसी फहम के पर्चे में नंबर पूरे, तो ना मेरी तजवीद अच्छी, तो ना ग्रामर अच्छी, अब मैं क्या करूँ? ऐसे भी लोग होते हैं, और ऐसे बहुत सारों की ज़रूरत भी होती है। देखिए ईंटें ही नहीं होती, ईंटों के बीच में रोड़े भी लगाने होते हैं, रोड़ी भी होती है, सीमट भी होता है, बजरी भी डालते हैं, वो रद्दा भी लगाया जाता है ऊपर। अब मेरा तो किसी जगह नाम ही नहीं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है लिखे। और ये उन सारे साथी जो पूरी दुनिया में दीन के नाम पे सीखने जाते हैं, बाद में कहते हैं लिखना नहीं आया, पढ़ना नहीं आया, नंबर थोड़े ये वो। मान लीजिए कि आपको दिखा ना आप टीचर बनने के काबिल, ना आप ग्रुप लीडर बनने के काबिल, ना कोर्स इंचार्ज, ना क्लास इंचार्ज, जो भी है कमियां ही कमी है ना, वीकनेसेस वीकनेसेस। तो एक जुमला लिखिए, टर्न योर वीकनेसेस इन टू योर स्ट्रेंथ। अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाए। कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि तुम्हें तुम्हारे ज़यीफ़ों और कमज़ोर लोगों की वजह से रिस्क मिलता है। बिलीव मी, ये बात इतनी सच्ची है कि मैं हर इंस्टीट्यूट में जिस तरह भी अल्लाह ले जाता है, जिस भी मुल्क में होती हूँ ना, तो वहाँ अक्सर तकरीबन 10% बूढ़े लोग होते हैं, आंटीज़ अम्मास, 70s, 72, 80। फिर वो कभी मतलब चलते फिरते इधर उधर ब्रेक में बात में, जब भी उनको मौका मिलता है ना, फिर वो मेरे पास आना चाहती है। यकीन करें मैं उनका हाथ पकड़ के ना तो उनको स्टेज पे जो कुर्सी साथ है उस पर बिठाती हूँ, अम्मा इधर आए, अम्मा जी बैठ। कभी कभी क्लास में उनको बुलाती हूँ, अम्मा जी तुसी शेयरिंग करो। हमारे पास ऐसी शेयरिंग्स बहुत सारी सेव्ड हैं, अगर आपने सुननी हो तो किसी भी चैनल पे उनकी भी अपलोड कर देंगे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे। सुन के तो देखिए जो उनकी आवाज़ का दर्द और वो जो उनकी पूरी ज़िंदगी का खुलासा उनके लफ्ज़ों में होता है ना, मैं ते बुढ़ी माई, मैनू की आंदा, ना मैनू पढ़ना आंदा, ना मैनू लिखना, बस मैनू ऐथों कड़ी हो ना। अब जिनको पंजाबी नहीं आती उनको कोई ट्रांसलेट कर दे। मुझे भी पता है कि इस अम्मा जी ने कोई हेडमिस्ट्रेस तो नहीं लग जाना कहीं, ये कोई आलिमा तो नहीं बन जाएंगी, ये फाजिला भी नहीं बनेंगी, और ना ये मुफ्तिया और ना शेखा के दर्जे पे पहुंचेंगी। यही नाम है हमारे पास बड़े बनने के, माजरत के साथ हम चार नाम देखते हैं उस्तादों के, कहते हैं यही है सब कुछ। मैं कहती हूँ सारी दुनिया के उस्ताद जमा हो जाएं, आप उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी के लेवल की टीचर भी बन जाए ना, तब भी आप फितरत के असूल पे पूरी नहीं उतरी, अगर आप जाने से पहले अपना फिर बीज ना दे के गई। हम अपने नाम के साथ बहुत बड़े उस्ताद बने होते हैं, बनाता कौन है आपको उस्ताद? आप कुर्सी पे थोड़ा सा एक स्टेप ऊंची कुर्सी पे स्टेज पे बिठा दी गई और हाँ, और माइक बड़ा अच्छा रख दिया, और एक तरफ आपके बड़ा प्यारा सा ग्लास पानी का, थोड़ी देर बाद चाय और कोई नट्स और कोई आपको मेवे रखे, आप कहते देखो ना मैं हूं ना सब कुछ। फूलते हैं आप, कैसा फूलते हैं, जैसे बीज फूलना। वो कौन है जिन्होंने ये आके खोला था हॉल, और वो कौन है जिन्होंने टाइम टेबल बनाया था, और वो किधर? देखे ना, मिसाल है आज के सेशन का टाइम ही ना कोई बताता। ये जब मैसेज ग्रुप्स में जाता है, आप मेरी आवाज़ को देख कर कहते हैं जी मैं पढ़ा रही हूँ, टाइम आपको ना पता चलता, जूम का रूम आपके लिए ना खुलता, यूट्यूब के ऊपर आपको कोई ना सर्व करता, फेसबुक पे आप ना होते, व्हाट्सएप वाले ना होते, और जब ऑन साइट क्लासेस होती हैं तो दरवाज़ा खोलने से लेके जाने तक उस जगह की सफाई सुथराई, उसकी ब्रेक कोई ना करता, आपके बच्चों को कोई सर्व ना करता। मुझे बताइए, ये मैं अपने घर में बोलती होती, आपको तो पता भी नहीं होता किस वक्त बोलना। तो लिखिए, सिर्फ उस्ताद टीचर नहीं होता, वो तो उसका तो इतना कम हिस्सा है, और ये तो अभी बोलने से पहले के मरहले हैं ना, जो उससे बाद के मरहले होते हैं। आप एक बात एक बार बोल देते हैं, कई बार अल्लाह उसको दूसरों तक नहीं पहुंचाता। किस किस चीज़ पे आपकी बोली हुई बात को एडिट कौन करता है, आपकी बात अपलोड कौन करता है? याद रखिए, फितरत का असूल जाया के दरख्त बनी है, और आप कहते हैं ऑल इन वन, वन मैन शो, मैं सब कुछ हूँ। पीछे बात हुई थी इसलिए इस पे छेड़ूंगी नहीं बात को, लेकिन लुक बिजी डू नथिंग वाली कैफियत जब हमारी होती है ना, तो हम खैर नहीं देते। तो अगर आपको अपने अंदर कोई खूबी भी नहीं दिखती, तो एक जुमला लिखिए। मैं कहती अम्मा जी तुसी ए स्कूल दी बरकत हो, अम्मा जी तुसी आ जाया करो, अम्मा जी तुसी वो पीछे सोफा ताड़े ली लाया। और ये हर जगह, मैं मिसाल जो अक्सर देती हूँ वो नॉर्वे की देती हूँ, लेकिन रियली हर जगह ऐसा ही है। मैंने जो पिछले 2 साल तकरीबन रमज़ान जोहराबाद और खुशाब में गुजारा, कैन यू बिलीव इट? मैं कल भी अपनी किसी शन परसों मीटिंग में किसी को सुना रही थी, हम सारे हंस रहे थे कि अगर ये रिकॉर्डिंग ना ना होती होती, जिसके बाद बात आगे जाती है, या इस वक्त कह ले लाइव ब्रॉडकास्ट ना होती, तो मेरी ऐसी भी कई क्लासेस हैं कि मैं इनको पंजाबी में दरस देती। मैंने कोई इतनी मुश्किल बातें करनी थी जो आयत वायत में होती हैं? सुबह चल रहा है आजकल सेशन अल्हम्दुलिल्लाह सूरत माईदा पे। यकीन करें जिन लोगों में बैठ के करूँ, अगर मैं उनके साथ कर रही होती तो ये तो 10-10 मिनट की आयत थी, ये कैसे एक एक दो दो घंटे में एक एक आयत होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि चलो किसी को तो फायदा होगा ना, ये बात बाहर जा रही है, तो वापस आइए कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आपको कोई नहीं देख पा रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप में दरख्त बनने की सलाहियत नहीं है। असल में हमारा माशरा बड़ा ही बेरहम माशरा है। ज़रा सा किसी का जिस्मानी ऐब हो ना तो उसको मजाक उड़ाएंगे। हालांकि असल हैंडीकैप वो नहीं है जिसके जिस्म में कोई ऐब है या जिसका दिमाग काम नहीं करता। असल हैंडीकैप वो है, आंखें हैं मगर आंखों से सही काम नहीं लिया जा रहा, टांगे हैं लेकिन गलत जगहों पे चल रहे हैं। तो हमें एक कामयाब और एक मुकम्मल इंसान की डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी। जिसके अज़ा मुकम्मल है लेकिन उसकी सोच ही नहीं, वो गुनाह के कामों में लगा है, वो है हैंडीकैप। और जिसकी बसारत ना सही, बसीरत है, वो उसकी आंखें ठीक है, वो अंधा नहीं। कुरान कई बार नहीं कहता, आप खोल के पढ़िए, सूरह हज पढ़ लीजिए, कई मिसालें हैं। मैं आपको इस सेशन में ज़्यादा हवाले देना नहीं चाहती, हल्का फुल्का सुनिए। अल्लाह कहते हैं आंखें नहीं अंधी होती, दिल अंधे होते हैं, जो दिलों में है, जो सीनों में है। और नेमतें चूंकि मिली हुई हैं तो इसकी कदर नहीं है, वक्त के साथ साथ ये चीज़ें समझ आती हैं। चलिए अब ये बातें तो चंद वो थी ना कि जो शायद आप में से किसी को फ़ायदा दे दें, मुझे तो अपने लिए फ़ायदा लगता है इन चीज़ों से। अभी तक जितनी बात की ना, मैं इसका खुलासा करती हूँ चंद जुमलों में। अगर आप ये समझ गए हैं कि मैं कामयाब हूँ कि नहीं, तो फिर आगे फ़ायदा होंगी कि नहीं है तो क्यों नहीं है। वो कामयाब नहीं है जो दिन में 2 घंटे पढ़ाता है, और वो भी नहीं कामयाब जिसको सारे शहर में एक ही नाम है कि जी बाजी आके दर्स दे दें, और इसी तरह सो ऑन, या कोई एक इदारा या एक मौलवी साहब जो मर जाए कहते हैं मौलवी साहब आके जनाजा पढ़ा दें, और वो मौलवी साहब जो कहते हैं जी के निकाह मेरे बगैर किया तो मैंने रुस जाना है, फिर मैंने जनाजा भी नहीं पढ़ाना तुम्हारा अगर तुमने मेरे से निकाह ना पढ़वाया, वो भी मौलवी साहब कामयाब नहीं है। कामयाब वो है कि जो रूट से फ्रूट और फ्रूट से फिर सीड छोड़ कर जाए, जैसे अल्लाह के नबी छोड़ कर गए। आप और मैं अगर कोई खैर का काम करते हैं ना, तो हम भी अल्लाह के नबी के बीज ही हैं छोटे छोटे। यही वो तड़प थी, यही वो तलब थी जिसमें अल्लाह ने अपने नबी को भेजा। तो जितना ज़्यादा अपने लिए ये चीज़ आप समझ जाएंगे ना, मेरे बाद क्या होगा, लिखिए व्हाट एम आई लीविंग बिहाइंड। जब शुरू में अमेरिका से सिलसिले को इसको मैं जोड़ूँ ना, तो सबसे ज़्यादा जिस मौजू पे दर्स दिया, बाहर भी ट्रिप्स होते थे, डेलस जाते थे हम लोग, ऑस्टन जाते थे, शिकागो, और जितनी भी स्टेट्स थी अल्लाह ने माशाल्लाह बहुत सारी जगहों पे कदम लगवाए। अक्सर एक ही फ्लायर नई जगह पे एडिट होता था मेरा, आज भी उसका इमेज, उसकी एक एक चीज़ याद है। आप लोग देखें तो हंस हंस के लोट पोट हो जाएं कि ऐसे फ्लायर होते थे आपके, ऐसे ही आते थे उस वक्त, पता ही है, तो खुद ही जो बनाते थे। और उसके ऊपर टॉपिक क्या होता था, व्हाट एम आई लीविंग बिहाइंड, मैं अपने पीछे क्या छोड़ कर जा रही हूँ। आप अपने आप को एक दरख्त के सूरत में सोचिए ना, कि वो दरख्त तो बंजर है, जो बेचारा कट गया तो ख़त्म, जिंदगी में था, चलो फल नहीं दिया ना, थोड़ी छांव दे दी, साया दे दिया, थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन मिल गई। क्या मैं ऐसा दरख्त हूँ कि बस मैं अपनी जिंदगी तक तो साया दे रही हूँ लोगों को, फल भी आता है मेरा, लेकिन वो फल आगे से बीज में नहीं डल रहा। तो आप तो रोएंगी, वो दरख्त रोते हैं जिससे उनके सारे पत्ते उतर चुके होते हैं, ऐसे लगता है वो माँ जिसके सारे बच्चे ही चले गए, खिजां होती है ना ऑटम, लेकिन फिर आ जाते हैं। तो कामयाब वो है, प्रोडक्टिव वो है, सक्सेसफुल वो है, फ्रूटफुल वो है, जो अपनी जिंदगी में अपने बाद के लिए लोग तैयार करके जाए। वो साइंस के मैदान के लोग हैं तो साइंस का वो टीचर कामयाब है जो अपने पीछे अपने से अच्छे स्टूडेंट छोड़ के जाए। और वो किसी फील्ड में, टिप में ले लीजिए, किस में, अपने बात के लिए तैयार हों। आप देखिए कि मेडिकल की अगर लाइन से आप में से कोई भी थोड़ा बहुत भी जानने वाला हो ना, जो सबसे अच्छा डॉक्टर होता है ना, यानी मिसाल 10-20 साल का तजुर्बा हो गया, उससे फिर ऑपरेशन नहीं करवाते, उससे मरीजों की नब्जें नहीं दिखवाते, वो क्या करते हैं भला, उसको प्रोफेसर बना देते हैं, कहते कि आपके उस तजुर्बा बहुत है, आप इस तजुर्बे की रोशनी में आप स्टूडेंट्स को पढ़ा के जाएं कि ऐसा मरीज़ आ जाए तो क्या करना है, और ये बीमारी ये दवा, यानी वो कह लीजिए, मैं बड़ी प्यार से और इंजॉय करते हुए कहने लगी हूँ एक जुमला जो अल्लाह ने अभी दिल में डाला है। हर प्रोफेशन, चाहे वो मेडिकल, चाहे वो लॉ, वो ATBTC, तजुर्बों के बाद वो शख्स उस्ताद बन जाता है, अपने फील्ड का बनता है। जैसे हम में से कुछ लोग कुरान के उस्ताद हैं, कुछ हदीस के उस्ताद हैं, उस्ताद का मुकाम कभी कम नहीं हो सकता। जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जहाँ उस्ताद की बड़ी इज्जत है, आज भी वहाँ टीचर्स का पे स्केल बहुत सारे दूसरे जॉब होल्डर्स से ज़्यादा है। तो चंद साल पहले की जो बात मेरे तक पहुँची थी, तब कोर्ट भी की थी रेफरेंस के साथ, कि वहाँ के डॉक्टर्स ने और वकीलों ने हड़ताल कर दी कि हमारी भी पे बढ़ाई जाए, चले हमारी पे जो है वो इतनी तो बढ़ाएं ना कि देखें उस्तादों की तो इतनी है, तो एक उस्ताद की तो इतनी है, तो हम तो फिर डॉक्टर हैं। आपको पता है कि उस मुतालबे का जवाब क्या था? उन्होंने कहा कि हम उन लोगों से ज़्यादा आपकी पे कैसे कर दें जिन्होंने आपको डॉक्टर बनवाया, जिनकी तालीमात से आप इंजीनियर बने और ईटीबीटी सीटी जो भी समझ लें। बात तो समझ गए ना, उस्ताद तो उस्ताद होता है, वो कच्ची पक्की का हो, वो इंग्लिश सिखाए, उर्दू सिखाए, फारसी सिखाए, वो मेडिकल प्रोफेशन दे। तो मैं इस वक्त ये सेशन जो कर रही हूँ, कल भी मैं सोच में थी और मेरा फेवरेट सेशन है, मेरा पैशन है ये, तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि अक्सर कुरान उस्ताद तो कुरान ही पढ़ाते हैं, और पढ़ा दें और गहराई से पढ़ा देंगे, हदीस पढ़ा ली तो आगे हदीस की और दूसरी किताब तीसरी, ये मुझे क्या शौक है, मुझे क्या मसला पड़ा हुआ है कि मैं टेक्निकल मीटिंग में भी मेरा दिल करता है मुझे लेके चलें, और अब ये पर्सनल ग्रूमिंग ये कोई मेरा काम है? जाएं ट्रेनर्स के पास और $500 दे कर ज़रा पर्सनैलिटी ग्रूमिंग लें, लेकिन फिर मुझे लगता है कि ये मेरी खुद गर्जी होगी। देखिए एक होता है अरबी का कुरान, आजकल जो लाइफस्टाइल यानी ये जो स्केड्यूल चल रहा है ना इन दिनों में, नाउ डेज, मेरा ख्याल है सारी ज़िंदगी भी ये चलता रहे तो मैं बहुत खुश हूँ। पैशन मेरा कुरान की तफसीर है, अल्लाह के हुक्म से मंडे से फ्राइडे 5 दिन हम आयत बाय आयत कुरान की तफसीर कर रहे हैं। एक आयत होती है बड़ी मुश्किल से रोज़, एक दफ़ा छोटी थी 2-3 दिन पहले तो बस कह ले कि पूरी करने के लिए 3 कर दी, क्योंकि मौजू भी एक था और बिल्कुल छोटी ऐसी थी, नलजीना मनु अमिल सालिहात वगैरह, और शाम को डोंट बी सैड है 4 दिन हफ्ते में। कितने लोग गमों की दलदल में फंसे हुए थे, ये मुझे तो नहीं पता था, ये मेरा तो ड्रीम था बहुत साल पहले कि डोंट बी सैड बुक पढ़नी है। रमज़ान के बाद सबसे मशवरे किए ये करें वो करें, कितना कुछ सोचा था, अल्लाह ने दी बेस्ट चीज़ चूज़ करा ली। तो ये आपके साथ जो मेरे सेशंस चल रहे हैं, ये अल्लाह करे कि मैं सारी ज़िंदगी करती रहूँ। क्यों? देखिए क्यों कहा था अल्लामा इकबाल ने कि खुदा तुझे जिद्दते किरदार अता करें। आज दीन के काम करने और दीन प्रेजेंट करने वालों के अंदर अगर कमी बेशी लोगों को दिखती है तो वो दीन की कमी कहलाती है, ए टू जी, बात करने चलने फिरने से लेकर अमल की जिंदगी में। तो मुकम्मल तो कोई नहीं हो सकता, आपको मुझे बस ये कोशिश करनी है कि अल्लाह हमें बेहतरीन सदका जारिया बना और हमारे बेहतरीन सदका जारिया बना, और हमारे मरते ही, हमारे आंखें बंद होते ही, दुनिया से जाते ही ये नेकियां ख़त्म ना हो जाएं। क्या फ़ायदा फिर उसका? लोग कहते हैं बड़ी नेकी, अच्छा पढ़ाने में जो मज़ा आता है ना, ये सच बताऊँ, ये एडमिन बनने में कोई नहीं आता। अक्सर एडमिन कहते हैं उस्ताज़ा हमें सवाब मिलता होगा, हम तो सारा दिन लोगों की बातें सुनते हैं और हमें तो लोग बुरा ही कहते हैं, उस्ताद को लोग बड़ा अच्छा कहते हैं, एडमिन से तो अल्लाह माफ़ करे कोई खुश हो गया। तो मैं कहती हूँ बड़ा ही खुशबख्त बंदा है जो एडमिन से खुश होता है। जैसे आप देखिए ना, आप जहाज़ में जाकर देखे ज़रा, हमेशा अमले से गिरे, अमला एयर होस्टेस, ये जी बेल्ट बांध लो जी, सीढ़ी कर लो, मुझे तो पढ़ना था भी नहीं, ये कहते बंद कर दो, मुझे तो फ़ोन पे खेलना है, कहते बंद कर, स्विच ऑफ फ़ोन, सीट बेल्ट सीधी कर लें प्लीज़, और दिस एंड दैट, गुस्सा कितना आता है उस वक्त एयर होस्टेस पे, पर वो अमला है, करना पड़ेगा। आप आपके पायलट बड़ा अच्छा जहाज़ चला रहा है, तो पायलट अमले के बगैर क्या है? याद रखिए ये वो लोग होते हैं जो मैं इस वक्त टॉपिक दे रही हूँ ना, असल में जो मेरे दिल के अंदर ठंडक है ना, मैं उसको शेयर करती हूँ। बेहतरीन से बेहतरीन लोग अल्लाह की रहमत से इस वक्त भी मेरे साथ हैं, जिनमें खैर थी, जो खैर थी वो कर लीजिए। 2-4 दिन पहले किसी एक अपने इदारे से एक सिस्टर है, उनका मुझे फ़ोन आया, मैंने कहा कोई वजह होगी, कोई पर्सनल मामला करते कराते, लेकिन उनकी वजह क्या थी जो भी थी वो तो छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं अब स्कूल तो आ रही हूँ बट कोई भी बच्चे का साथ है या कुछ है तो मैं स्कूल को कुछ नहीं दे के जाती और क्लास में ये मुझे बैठने नहीं देता, मतलब मैं ले तो रही हूँ फिर भी आ रही हूँ, लेकिन मुझे ये फिक्र है कि मैं दे नहीं पा रही, तो साजा मुझे कोई ऐसा काम दें कि मैं स्कूल को फ़ायदा भी दूँ। खैर आखिर मैंने कहा आप खुद बताइए आप क्या करेंगी, मैंने कहा बेबी सिटिंग में अपनी ड्यूटी लगवा लें। कहती वहाँ बैठती हो तो यही होता है मेरे पास और मेरी जान नहीं छोड़ता, पेपर पेन कागज़ नहीं पकड़ने देता बेबी उनका। खैर कहती फिर मैंने खुद ही कह के मुझे स्कूल की सफाई का काम दे दे, मैं इसको साथ बिठा के किचन साफ किया करूँगी, ये वो। ये कौन कह रहा है आपको पता? कि मेरा ख्याल है कि बाहर की दुनिया में आप निकली हैं यहाँ जॉब करने तो 30-35 हज़ार, चले आप डॉलर्स में कह दें $2-3 हज़ार लेकर आए, इससे भी ज़्यादा, और वो काम ऐसे मांग रहे हैं कि बस मेरी जॉब लगवा दें कि मुझे क्लीनिंग का काम दे दिया, मैं वो कर लिया करूँगी, इसके साथ घर में भी करती हूँ उधर भी करूँगी। ये कोई पाकिस्तान की मासियाँ नहीं है, जिन मुल्कों में हम बैठे वहाँ सब रानी है माशाल्लाह। तो ये तड़प कौन देता है कि मैं किसी जगह लग जाऊँ, ये प्रोडक्टिविटी है। अब आप कहते हैं कि उस बंदे का अजर ही कोई नहीं होना कयामत के दिन। आप आज किसी वक्त बैठ कर ना कोई एक खोल लीजिए प्लेटफॉर्म और आपको जो कुछ भी दिखता है, ऑनलाइन की बात करती हूँ क्योंकि ऑन साइट पे तो मुमकिन नहीं और हर जगह आप जा भी नहीं सकते, आपको एक क्लिक भी दिखता है ना कहीं नूरुल कुरान के नाम पे, तो ये मैं नहीं हूँ। मैं ये कोई मुबालगे में भी नहीं कह रही, ये मैं कसरे नफसी के नाम पे बड़ा भी नहीं बन रही। बात लोग कहते हैं हाँ नहीं हम कुछ नहीं, ताकि लोग कहते नहीं जी सब कुछ तो आप ही हैं, वल्लाह इसके साथ नहीं कह रही, रियलिटी बेस्ड हूँ। और आज सुबह ये जुमला मैंने किसी से बोला है ना कि मेरे पौधों की हिफाजत करना, वो मुझे पौधे ही लग रहे थे बैठे छोटे छोटे, तो अब मैंने भी किसी को बोलना है, सुबह से दिल में डाला हुआ, मुनासिब मौका देख के बोलूंगी। जो आप लेते हैं ना वही देते हैं, जो आप देंगे वही कल मिलेगा। आज आप अपने उस्ताद के साथ कैसे हैं, आज ही मुस्तकबिल की बात जाके लिख लीजिए, आपके स्टूडेंट भी कल ऐसे ही होंगे। जो भी सो ऑन ए टू जी आपके मेरे साथ चीज़ पलट के आती है, एक हाथ से देते हैं और मैं कहती हूँ अल्लाह तू इतना देता है, मैंने क्या दिया होगा किसी को, या मैंने किसी अपने उस्ताद की क्या रिस्पेक्ट की होगी, और मैंने उनसे क्या प्यार किया होगा। तू तो इतनी, वैसे सूद हराम है लेकिन अल्लाह तू मोहब्बतों में इतना कुछ लगा के देता है। मैं जब भी कभी ट्रिप्स पे जाऊँ और क्लासेस दर्स होते रहे, जब भी कभी कोई ट्रिप्स में इस तरह की बातें, तो मुझे याद आता है कि मैंने अपने उस्तादों के लिए क्या ट्रिप्स रखवाए होंगे कभी, उसको कंपेयर कर लीजिए तो 0.0% था, अल्लाह ने उसके ऊपर कितने मल्टीपल करके वो लोग मुझे दे दिए कि जो अब इस काम में वो मेरी मदद कर रहे हैं। तो रूट टू फ्रूट टू रूट, या कह लीजिए कि रूट से फ्रूट और फ्रूट से फिर बीज बनना है, तो प्रोडक्टिविटी ये होगी। द रियलेस्ट प्रोडक्टिविटी इज दैट कि आपके बाद आपसे ज्यादा काम हो। आप कहते हैं काम कर रहे हैं ना, कितना कर रहे हैं ना, कितना यहाँ करती वो करती, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह कबूल करेगा आपसे, ये अल्लाह की रहमत है, लेकिन आपके बाद क्या होगा। और एक जुमला जो लोग बोलते बड़ी मोहब्बत से थे, आप नहीं बोलते वैसे, अल्लाह का शुक्र है, मैं इतना उस पर बैड फील करती हूँ ना कि फिर मैं डाउन हो जाती हूँ इस जुमले से। उस आपके सामने बहुत लोग आते हैं फिर आप नहीं होती तो नहीं आते, या आपके सामने ये आपके, यकीन करें मुझे ऐसे लगता है जैसे वो किसी गुब्बारे में से हवा ना निकाल दें। इसके मतलब ये है कि फिर मैं दुनिया से चली गई तो सारा ख़त्म हो जाएगा सिलसिला। मुझे आपसे ये जुमला सुनना है कि आपके बाद तो जो आते हैं छोड़ें, जब आप नहीं होती तो तब होते हैं, लाइव क्लास में जो होते हैं उसको छोड़ दें, जो रिकॉर्डेड में होते हैं वो देखिए आप। ये है मेरी सक्सेस, मुझे तो कोई बड़े बड़े हेडकाउंट्स नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बस मुझे ये पता कि ये आगे से सर्कल चलता रहे। आप देखना सर्कल अस बोला है, तो रोटी जितनी भी हो महीने का सर्कल चलता रहे तो लोग हैंड टू माउथ हैं, वो खुश हैं, बड़े हैप्पी हैं, रिलैक्स हैं, चलो जी 20,000 तनख्वाह है, ये सारे खर्चे पूरे होकर अगले महीने फिर 20,000 आते हैं। और अगर कोई आपसे कहे कि एक महीने आपको हम 2 लाख दे दें लेकिन 4 माह तक कोई पता नहीं कुछ मिलना काम के, नहीं वो नहीं ठीक होता, पक्का काम मिल जाए आपको ये दुआ करें। और पक्का काम उसको मिलता है जो जिम्मेदार होता है, और इस रास्ते की जो कुर्बानी है, जो हिजरतें, वो इतनी मीठी हैं, इतना खूबसूरत सफ़र है ये हिजरतों और कुर्बानियों का प्रोडक्टिव बनने का, कि बंदा हर कुर्बानी के बाद आसमान को देखता है, अल्लाह बस ये कबूल कर लेना, ये कल क़यामत के दिन पेश करूँगी ना तो वो पुल सरात की सख्तियाँ दूर करना। वो जैसे गार में फंसे 3 लोगों ने अपने अमल पेश किए तो रास्ते बन गए ना, तो मुश्किल हालात की नहीं किया, जहाँ माल के मुकाबले में जिम्मेदारी छोड़नी पड़े आपका इम्तिहान है, और जहाँ बच्चा मिल गया तो जिम्मेदारियां चली गईं और शादियां हो गईं और ये और वो।